हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 31वें श्लोक को देख रहे हैं। नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तमा न अयम लोको लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तमः। जो यज्ञ नहीं करता है अयज्ञ का, अयज्ञस्य अयज्ञ का इस लोक में भी, इस जगत में भी हित नहीं है, तो अन्य लोक में क्या, अन्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति के बारे में तो आप कुछ सोचो ही मत। हे कुरुसत्तम मतलब कुरुओं में श्रेष्ठ। तो बिना बिना यज्ञ किए कोई व्यक्ति ना तो इस जीवन में सुखी रह सकता है ना अगले जीवन में सुखी रह सकता है, ये बात भगवान बता रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। गीता भूषण टीका, यज्ञ ना करने के दोष को कह रहे हैं। जो व्यक्ति उपरोक्त यज्ञों को नहीं करता है, जरूरी नहीं कि सारे यज्ञ हर व्यक्ति करे, लेकिन कुछ तो यज्ञ जरूर करना चाहिए, कुछ एक यज्ञ करना चाहिए, वह अर्थ धर्म तथा काम से युक्त इस भौतिक जगत को भी प्राप्त नहीं करता तो फिर मुक्ति का तो कहना ही क्या। आप भी जानते हो कि चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं और उन पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्ति करना होता है। तो ये अर्थ, ये तो पता होगा ना कि अर्थ की प्राप्ति लोग नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है। तो धर्म का अनुशीलन क्यों करते हैं, हमारे अपन कृष्ण प्रभु बताएंगे क्या सीक्वेंस है।
धर्म का अनुशीलन करते हैं ताकि उनके उनको अर्थ प्राप्त हो, और फिर अर्थ इसलिए ताकि वो अपने काम को जो इच्छाएं हैं उनको तृप्त कर सके, और जब वो तृप्त नहीं होते, जब पता चलते संसार में सुख नहीं, तो फिर मोक्ष की तरफ बढ़ते, वो भी सायुज मुक्ति।
ये भी बहुत बाद में होता है, नहीं तो धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, ये समझ में आ रहा है आपको, धर्म अर्थ काम यही चलता रहता है। बात धर्म का मतलब यही सारी जो हमने यज्ञ इत्यादि बताए थे, अभी भगवान ने बताए हैं, हाँ, विभिन्न प्रकार का धर्म जो होता है, जिस व्यक्ति पुण्यात्मा बनता है उस कारण से उसको धन प्राप्त होता है। रघुपा जी समझाते हैं आजकल के जमाने में, क्योंकि बिना धर्म के ही ये अर्थ प्राप्त हो रहा है इसलिए लोग धर्म को त्याग रहे हैं। ये है 1.1.2 की टीका में रघुपा जी इस बात को बोलते हैं। हाँ, जो धर्म को, लेकिन ये जो धर्म है वो चीटिंग है। क्यों चीटिंग है इस प्रकार का धर्म जो अर्थ
की ओर लक्षित है? मोटिवेटेड, भौतिक लाभ चाहिए उससे। गणेश जी के सामने ऐसे कुछ करते हैं, व्रत इत्यादि का पालन करते हैं ताकि उनको कुछ
अर्थ की प्राप्ति हो। लेकिन कैटअप क्यों कह रहे हैं, चीटिंग क्यों कह रहे हैं?
इस धर्म से अंतिम जो लक्ष्य है वो नहीं प्राप्त,
मेन बात ये परम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसको श्रीदत्त स्वामी कहते हैं प्रोजित कैटवत्र, मतलब शुद्ध धर्म क्या है, अपर धर्म क्या है, केवल ईश्वर आराधना लक्षण, केवल भगवान की आराधना के लक्षण से युक्त वो जो धर्म है पर धर्म, उसको यहाँ पे बताया गया है भागवत धर्म। हाँ जी,
बलराम कृपा प्रभु की क्लास सुन रहा था तो वो इसी बात पे बता रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि अर्थ और काम हमारा फिक्स है, ऑलमोस्ट जो हमारा अर्थ और काम है वो पहले से ही प्रावत के अनुसार ऑलमोस्ट फिक्स है, तो उसके लिए धर्म करने की आवश्यकता नहीं, वो हमें पहले से ही मिल जाएगा, जो हमारे नसीब में जितना खाना है या जितनी हमारी इंद्रिय तृप्ति है।
ये अच्छा बात हमने बोली, ये है नारद मुनि की उक्ति है ना, तस्सेव हेतु प्रयते त को विदः न लभते यद भ्रमताम उपरिदः। सही बोल रहे हैं, जो कुछ हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार वो लिख चुके हैं, वह अभी कैसे लिखा गया, हमने पहले कुछ धर्म किया है उसके अनुसार, तो उसके लिए धर्म
करना उचित नहीं है। कि लोग आजकल जनरली जो है इसी अर्थ और काम के लिए भगवान के पास जाते हैं, अब वो हमारा पहले से ही फिक्स है।
देखिए, अगर भगवान के पास जाए तो फिर भी ठीक है,
मतलब देवी देवताओं,
लेकिन भगवान के पास भी नहीं जाते हैं, वो बहुत
देवी देवताओं के पास जाते हैं और ये इस चीज के लिए जाते हैं, इस चीज के लिए जाना ही नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट ये आपका फिक्स है।
पता नहीं महाराज एक विनोद में बात कह रहे थे कि कहीं कोई व्यक्ति किसी का कुछ डाल पे बैठा हो या कुछ तो बात हो, और कौवा उड़ गया वहां से, कुछ दाल का फल गिर गया और कौवा उड़ गया, तो सोचते हैं अरे कौवे की वजह से ये फल मुझे प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कोई गुरु जी के पास जाए, किसी भविष्यवेत्ता के पास जाए, कोई ऐसा हो गया, वो कहे तुम्हारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम तुम्हारा हमारा कृपा से हो जाएगा, और वो उसे कदाचित कर्मों की वजह से हो जाता है, तो सोचते हैं किसकी वजह से होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें धर्म जो है भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। तात्पर्य आज एक सुंदर सी बात बताई गई थी संबंध में, कि ये जो कृष्ण भावना का मिशन है ये लोगों को सुख देने के लिए, सुखावह। तो मैं उस पर विचार कर रहा था कि चलिए विचार तो हम अपना प्रस्तुत बाद में करेंगे, प्रश्न करेंगे कि जीव को सुख कैसे प्राप्त होगा। हम प्रश्न को एकदम स्पष्ट नहीं पूछ रहे, स्पष्ट पूछेंगे तो आप लोग उत्तर तुरंत दे देंगे, संस्कृत बोलूंगा तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा जीव को सुख कैसे प्राप्त होगा। बहुत इजी है आप लोग के लिए तो, बहुत इजी है। माइक बताइए, माइक बताइएगा।
हमारा जो वास्तविक स्वरूप है सच्चित आनंद है और हम जीवेरा स्वरूप है कृष्ण निद्रा, तो हम भगवान की भक्ति करके ही हमें वास्तविक सुख प्राप्त हो जाएगा। बाकी चीजों में अगर हम सुख ढूंढेंगे तो वो क्षणिक होगा, और ये है भी
ठीक है, थोड़ी सी बात उसमें रह जा रही है। भगवान की सेवा भी है लेकिन कुछ उसमें बात रह जा रही है, कुछ एक विशेष गुण है उस सेवा का, जब वह प्राप्त होगा तब व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा। प्रेम कह सकते हैं आप, और सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक शब्द सुनना चाहता हूं, अहेतु की अहप्रीता प्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धिति। जब भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त होती है तब व्यक्ति को सुख प्राप्त, वही प्रेम का भी वही अर्थ है। तो हम खाली अगर मैं बोलते था किससे आत्मा सुप्रसिद्धिति होता है तो आप तो पकड़ लेते इसलिए, लेकिन नहीं वो आप तो सामने बैठ गए ना, इसलिए आप प्रभु जी का आसन दे सकते हैं। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। ये बात देखो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने अनुभव से देख लीजिए, इतने सारे भक्त लोग हम लोग सब जप करते हैं, ऐसा लगता नहीं कुछ खास कर रहे हैं, लेकिन देखिए बहुत एक सारी सुविधाएं अपने आप प्राप्त हो रही, एकदम स्पष्ट। ये समझ लीजिए कुछ भी प्रोजेक्ट करना है, कुछ भी कर रहे हैं, अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो कुछ सफल नहीं प्राप्त होगा। तो बिना भक्ति किए व्यक्ति को सफलता कुछ प्राप्त होती नहीं, स्पेशली भक्तों के बारे में बोला जा रहा है। और मान लो कोई व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस जगत में सफल हो भी गया, अगले जन्म में क्या करोगे? अगले जन्म में तो नरक जाना पड़ेगा, पाप कर्म किए हैं तो इस जन्म में भी अच्छा होना चाहिए और अगले जन्म में भी अच्छे लाभ प्राप्त होना चाहिए। पढ़िएगा तात्पर्य।
मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है।
जबरदस्त ओपनिंग पर लाइन, कितनी जबरदस्त। इस लोक में चाहे कितना भी महान व्यक्ति हो, जैसे एक भक्त बोल रहे थे प्रभु जी उस आईएएस ऑफिसर की शादी में 80 आईएएस ऑफिसर आए थे। ठीक है, लेकिन अगर आप वाकई देखें तो बेचारे आहार निद्रा भय मैथुन से अधिक जानते नहीं कुछ, भले ही आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे मेरे को एक फोन अभी सामने की बात है, एक व्यक्ति आए, वो आईसीएस वही आईएएस ऑफिसर है, बोले मुझसे वो छूट नहीं रही है, मतलब दारू वो छूट नहीं रही है, वो आपको छोड़ नहीं रही है, मतलब है तो ऐसे तो वो उनको बोल रहे हैं कि बहुत बड़े मतलब हीरो हैं, कंट्रोलर राजा हैं, वो बोले थे वहां के राजा है, लेकिन उनकी रानी कौन है? दारू। उनको पकड़े हुए, तो मैंने सीधे बोला भाई आप नरक जाना चाहते हैं क्या? तो बताया उनको, फिर अपने हरे कृष्ण मंत्र तथा बताया। हम देख रहे हैं कि कोई महान व्यक्ति भी हो सकता है लेकिन पूरी तरह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, इसमें हमें कोई अनकंफर्टेबल ही नहीं लगता ना, हमको पता ही नहीं कि हम है कौन। अभी मैं जस्ट पता नहीं कैसे भगवान याद करा रहे थे, जैसे मैं क्लास देने के लिए उठा था तभी मुझे भगवान स्मरण करा रहे थे बात की, क्योंकि एक बच्चे की मृत्यु हुई है, इसके बारे में जान रहा था मैं कि हमारे एक भक्त के रिश्तेदार की, कि इंग्लिश में पहले बोलूंगा, एवरीथिंग विद व्हिच वी आइडेंटिफाई विल बी टेकन अवे एट द टाइम ऑफ डेथ। जिन जिन वस्तुओं से हमारी पहचान है, वस्तु हो, विद्या हो, कुछ भी है, वह सब कुछ छीन लिया जाएगा मृत्यु के समय। और अद्भुत बात है कि कभी भी आ सकती है, ये तो हम सोचते नहीं, हाँ हाँ हमारी आएगी, हाँ कभी भी आ सकती है, लेकिन हम सोचते नहीं कि मेरी आने वाली। जिससे भी हमारी पहचान है कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सफल हूँ, असफल हूँ, बुद्धू हूँ, सब कुछ, यहाँ का हूँ, वहां का हूँ, सब कुछ छीन लिया जाएगा एक साथ। और हम लोग बिल्कुल सोचते नहीं कि हम अपने स्वरूप से किस प्रकार से अनभिज्ञ, कोई अनकंफर्टेबल लगता ही नहीं है कि कुछ ऐसा है। और उस पर भी सोचते हैं, सनातन को सब अच्छा बोलते हैं, ग्राम में व्यवहार है पंडित को रिमानी, अपना रहित ही तो कुछ नहीं जाने। लोग ग्राम व्यवहार में मुझे पंडित भी कहते हैं लेकिन मुझे जानता ही नहीं कि मैं हूं कौन और मुझे क्या, मेरे लिए हितहित क्या है। बहुत अच्छी बात, पढ़िए।
दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है।
समझ में आ रहा है, बहुगुणित करते हैं। मान लीजिए आपने दो नंबर पाप किया तो उसका जो पाप का फल है वो दो नंबर नहीं मिलेगा, वो तो बहुत सारा मिलता है। तो ये और उसके बाद एक फल के बाद उसका दूसरा पाप, उसका दूसरा पाप, ऐसे करते करते हमको अगला जन्म मिलता जा रहा है। पढ़िए।
अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है, और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है।
समझाइए इसको, जिनके पास माइक है वो समझाएंगे। हाँ बताइए,
कुछ कहना
कहना नहीं चाहते हैं पहले आप, आप कुछ कहिए, क्या है प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं ऐसे? पूरा बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, क्या बता रहे हैं बताइए, माइक पे बताइए।
अज्ञान, अज्ञान है व्यक्ति को तो इसलिए वो
किस चीज का अज्ञान है,
अब उसको ये नहीं मतलब अपनी गलत अपनी पहचान गलत करता है, अपने आप को शरीर से पहचान करता है, उसके हिसाब से कार्य कर रहा है।
yes.
अब क्योंकि अज्ञान है इसलिए फिर वो पाप कर बैठता है, फिर हाँ. वो पाप कर बैठता है।
तो अज्ञान अपने को शरीर मानने से व्यक्ति पाप कैसे कर बैठता
है? क्योंकि वो अपने लिए करने लगता है और अपनी इंद्रियों के बारे में सोचता है हर समय
वो, हाँ, क्योंकि वो शरीर को इंद्रियों को संतुष्ट करेगा इसलिए पाप करेगा ही, करेगा ही करेगा। अगर कोई जीवन में पाप किए हैं ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं करेगा, क्या जीवन में कोई पाप नहीं किए कोई हाथ खड़ा करेगा? नहीं, तो या तो कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, बल्कि जब पाप कर रहे थे ये पता भी नहीं था कि ये पाप है, ये भी स्थिति है। और अब स्थिति ये है कि पाप मालूम है कि क्या पाप है फिर भी पाप करते हैं, ये भी एक पाप स्थिति है। लेकिन जब भी पाप करते हैं उसका पहला चीज क्या है, क्या याद रखना पड़ेगा कि हम लोग शरीर हैं, ये याद रखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद व्यक्ति पाप करता है। कहने का थोड़ा बात उल्टा पल करके बोल रहा हूँ, मतलब ये भूलना होगा कि हम आत्मा हैं तब हम पाप कर सकते हैं। जब हम भूल जाएंगे कि हम आत्मा हैं और ये याद रखेंगे कि हम शरीर हैं तब व्यक्ति पाप करता है। हम लोगों को याद रहता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, इसलिए शास्त्र का वचन सुनकर के कार्य करना चाहिए। जैसे आपके सामने जैसे प्रभु जी ने मुझे बादाम दी है, तो अगर मैं केवल अपने किसी ने भी दिए, आप लोग के लिए नहीं दिए, अब स्वाभाविक रूप से एक भक्त क्या सोचेगा, इस बादाम को मैं कुछ बनाकर भगवान को अर्पित करूंगा। तो भले ही हम शरीर के स्तर पे हैं लेकिन ये जरूर पता है कि इस शरीर का इस्तेमाल कैसे करना। और अगर केवल शरीर के स्तर पे रहते तो वो तेला बादाम पैकेट खोलो और स्वाहा आहा चालू हो जाएगा, तो ये पाप होगा। और दिक्कत है कि इस समय इंद्रियों को अंतर नहीं महसूस होता कि ये पाप है ये पुण्य है। आप बादाम खाइए भगवान को बिना अर्पित किया, कोई भी वस्तु बिना अर्पित किए खाए तो थोड़ा मालूम चलता है कि मैं हर कौर पे पाप खा रहा हूं, उसका तो फल बाद में प्राप्त होता है। अज्ञानता में जो पाप करते हैं उसका भी पाप तो लगता ही है भाई। चालान तो दोनों का लगता है, जिसको पता हो कि मतलब रेड लाइट क्रॉस करना चाहिए या नहीं, और जिसको नहीं पता उसको भी चालान होता है। मनुष्य जीवन बड़ा खतरनाक है क्योंकि हर चीज का बिल लगता है। केवल 5 साल की उम्र के नीचे होता है उस जो कार्य करते हैं, 5 साल या 14 साल में थोड़ा कंफ्यूज हूँ कहीं, ना ना 14 साल, 14 साल से नीचे जो कार्य करते हैं उसके पाप नहीं लगते, क्योंकि मंडूक ऋषि जो थे वो उसी बात को बोल रहे थे कि 14 साल से कम, मेरा डाउट है बट मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है 14 ईयर से 5 साल के बाद जो है भक्ति करना चालू कर देना चाहिए, लेकिन 14 साल के पहले के पाप लगते नहीं, ऐसा कुछ सुना है मैं, कुछ ऐसा है। उसके बाद व्यक्ति को मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जाने पाप और पुण्य क्या है। गलती उसकी क्या है? गलती उसकी है जगत में, गलती हो या नहीं हो, जो उसका जो भी कर्म के नियम है वो लगते ही है कि नहीं ये। और यही तो, इसीलिए तो, अरे आप सोचिए, इसीलिए तो लोगों को बताने की जरूरत है उन्हें क्या करना है। गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है जो हम लोगों को बता नहीं रहे, तो इसलिए आवश्यक है कि बताया जाए। बात बस ये बात चक्र यही है कि अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण व्यक्ति पाप कर रहा है और पाप के कारण उसका जगत में अस्तित्व बना हुआ है। यस,
मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है।
इसमें मैं छोटी सी कहानी बोलना चाहता हूँ। एक अंधा था और वह एक स्टेडियम में घूम रहा था और उसके पास एक डंडी थी और बार बार वो डंडी से ऐसे प्रयास कर रहा था ढूंढने के कि दरवाजा कहाँ है, क्योंकि अंधा है। और जब वाकई दरवाजा आया तो अपने हाथ को खुजलाने लगा। स्टेडियम में एक दरवाजा होता है, खुजलाने लगा, अब फिर वो घूमने लगा, जितनी बार दरवाजा आता उतनी बार वो खुजलाने लगता। तो कहानी का सार क्या है, कहानी का अर्थ क्या है कि आंखें अंधे होने का अर्थ है कि अन्य योनियों में बिल्कुल भी आत्म साक्षात्कार की कोई भी संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं। अब जब मनुष्य जानवर को देख लीजिए, कुछ भी पता नहीं है, कुछ पता है, नथिंग, जीरो, और समझा भी नहीं सकते। और आज जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं तो थोड़ी खुजली करने लग जाते हैं। खुजली का मतलब क्या है, इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं, तो भूल फिर हमारा ये दौर फिर समय समाप्त हो जाता है, फिर अगला जन्म में हम घुस जाते हैं। तो ये बड़ा इंस्ट्रक्टिव स्टोरी, तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं इस बंधन से। और बात ये है कि मनुष्य जीवन केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए कि मुक्त हो जाए, और वस्तुतः किसी भी चीज के लिए नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात।
अतः वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं।
एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब व्यक्ति उपरोक्त यज्ञ करता है तो उसकी जो आर्थिक सुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, वे अपने आप सॉल्व तो हो ही जाती हैं, साथ साथ उसका हृदय शुद्ध भी होने लगता है, जो आगे के अभी श्लोकों में आप सीखेंगे। कि एक तो यह है कि भाई अब सीधी सीधी बात है, आप लोग में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो खाना नहीं खाया हो भी, आज दोपहर का लंच नहीं किया, ऐसा कोई व्यक्ति है? एक। और तो कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, माइक बता दीजिए, कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है कि खाए नहीं है? यस, स्वाभाविक सी बात है। तो अब खाने के लिए नहीं होगा तो धर्म क्या करेगा, या और कुछ कार्य कैसे करेगा? तो आर्थिक जो आवश्यकता है, ईटिंग प्रॉब्लम जिसे कहना चाहिए, फिर जो वो अपने आप सॉल्व हो जाती है अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करता है। ये बात हमें बोली जा रही, लेकिन फायदा ये है कि वो यज्ञ करने से धीरे धीरे उसका हृदय में शुद्धिकरण भी होगा, ये फायदेमंद बात है। और अगर यज्ञ करके किए बिना व्यक्ति धन प्राप्त करता है तो फिर उसको हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा पड़ेगा।
जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है, और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्ण यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे
यह पूर्ण यज्ञ नहीं, यह पूर्णता,
या पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती
है। कौन सी पूर्णता? अभी पढ़ ही रहे हैं, अरे स्वाध्याय कर रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ भी कर रहे हैं। पूर्णता क्या है? माइक किसके पास में? जिसके पास माइक है, जिसके पास लाठी उसी की भैंस, वही बोलेगा जिसके पास माइक है। यस बोलिए।
जीवन परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त।
परमेश्वर कौन है?
भगवान कृष्ण।
भगवान कृष्ण, ठीक।
यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह शरीर में सुखी जीवन की कैसी कैसे आशा कर सकता है?
एक श्लोक मैंने याद किया है तो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और उससे आपके मन में डाउट भी थोड़ा कूरे देंगे, फिर उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो, जो तपस्विनी है, तपस्वी है, हमने पढ़ लिया था तपस्या के बारे में चंद्रायण व्रत। दान पर द्रव्य के बारे में पढ़ा था। यशस्विन, जो बड़े बड़े उसमें लिखा है तालाब इत्यादि खुदवाते हैं, ये क्या नाम था, गेधरलाल जी कहते हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं मंत्रविदा मनस्विनो, जो बहुत मननशील हैं और मंत्रविद, बहुत मंत्र जप करते हैं। और उसके बाद क्या है, सुमंगला, जो बहुत सदाचारी हैं। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम, अगर इन सब चीजों को, इन यज्ञों को आपको अर्पित नहीं करते, मतलब भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं करते हैं, तो क्षेम प्राप्ति, इनको लाभ नहीं मिलता, इसका फल प्राप्त नहीं होता। तो टीकाओं में से कहा गया है कि फल प्राप्त नहीं होता है, अर्थात परम फल प्राप्त नहीं होता। थोड़ा थोड़ा फल प्राप्त जरूर हो जाएगा, लेकिन परम फल जो है, जो भगवत प्राप्ति, वह प्राप्त नहीं होगा। तो मन में आ सकता है आपके, अगर भी हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भौतिक लाभ तो प्राप्त हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन क्या आत्यंतिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। आत्यंतिक लाभ, भगवत धाम की प्राप्ति तभी होगी जब इन सभी क्रियाओं को भगवान को अर्पित किया जाए। बहुत सुंदर बात वो बोल रहे थे। तो यही श्लोक मुझे सामने प्रस्तुत भी करना था और ये लिंक भी है इसका। डाउट ये है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई अमेरिका में तो भगवान का भजन नहीं चल रहा, तो इतना अमेरिका जो है समृद्ध कैसे हो रहा है। देखिए साथ साथ आप भी जानते हो कि वहां पे बहुत मानसिक परेशानियां, झगड़े, बहुत सारे, बहुत क्राइम सब चल रहा है। आर्थिक रूप से सुखी हो सकते हैं लेकिन मानसिक रूप से सुखी नहीं। सोचिए हर व्यक्ति के पास एक गन है, वो भी मैंने सुना वहां पे घर में आप मशीन गन रख सकते हो। टू मच, यू नो, वॉशिंग मशीन नहीं, मशीन गन, अरे टू मच, यू नो। तो किस प्रकार से जो है लोग कर सकते हैं, तो ये कितना भय होगा। यह मत सोचिएगा कि जिसके पास गन है वो निर्भय होता है, वो बहुत भयभीत होता है कि मुझे कोई मार देगा तभी उसको आवश्यकता होती है गन इत्यादि रखने की। मैं खाली बोल रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति भौतिक रूप से भी सुखी नहीं होता है, ये नहीं सोचना चाहिए। ये बार मुझे पहले भी किसी ने पूछा था कि अमेरिका तो बहुत सफल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भगवान के तो भजन नहीं चल रहा। तो हो सकता है वह तो अपने पूर्ण सुकृति के कारण कुछ समय के लिए फूले, लेकिन बाद में उनको वो कभी आत्यंतिक लाभ प्राप्त नहीं हो। माइक पे बोलिए।
सबसे ज्यादा आत्महत्या क्यों है, हम सुसाइड क्यों करते हैं?
मैंने सुना
सबसे ज्यादा सुसाइड जो है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका में होता है।
असंतुष्ट
हर एवरी फिफ्थ वेव चाइल्ड नहीं जानता कि उसका बाप कौन है, उसकी मम्मी कौन है, ये कितनी समस्या है।
और साइकेट्रिस्ट भी पागल हो जा रहे हैं। साइकेट्रिस्ट बहुत पैसे वाले हैं, साइकेट्रिस्ट भी पागल हो जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा पागलों से डील करना।
फिर दूसरे लोक में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत परम सुख मिलता है।
किंतु yes, इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा है इस जीवन में भी सुखी नहीं हो सकता और अगले जीवन में भी सुखी नहीं होगा, ये बात। और दूसरा चीज ये है कि जो यज्ञ कर रहा है इस जीवन में भी सुखी होगा, और भगवत धाम की प्राप्ति नहीं भी हो तो स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी, वहां भी सुख प्राप्त होगा। माइक पे कुछ कहना चाहते हैं शास्त्री जी?
भगवान विष्णु को, विष्णु की जरा भी मतलब भक्ति नहीं किए बिना स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा
ना? यही तो लिखा है तपस्विनो ज्ञान।
तो अभी जस्ट बोल रहे
जब हमने कर्म कांड की बात करी थी, तो कर्म कांड में भी आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का नाम उच्चारण किया जाता है
मंत्रों में, मतलब ओम वगैरह में वो
सब जगह आता, तो उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। और इस चीज को हम लोग मोघाशम मोघ कर्माणो वाले श्लोक में भी देखते हैं, भगवान का उपहास करने वाले के जो कर्म है उनकी सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। फिर भगवान स्वयं बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा, जितने भी यज्ञ है उनकी प्राप्ति कराने वाले तो भगवान।
तो पीछे के जो श्लोक थे रोजी वहां तो
क्या
जो ये सब थे प्राणायाम में, मतलब अपान को प्राण में, प्राण को अपान में, और भी जो सब थे उसमें कहाँ दिख रहा था कि भगवान विष्णु को डेडिकेट किया जा रहा है?
देखिए भगवान विष्णु को डेडिकेट नहीं किया जा रहा डायरेक्टली, लेकिन इसकी पद्धति कहाँ से प्राप्त हो रही है?
शास्त्र
मतलब वेद से, तो वेद की आज्ञा मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की आज्ञा मानी जा रही है, परोक्ष रूप से मानी जा रही है, लेकिन अपरोक्ष रूप से मानी जा रही है। तो वह फिर हमने पहले भी बीच में पढ़ा था टीका में कि वेद की आज्ञा मानना मतलब भगवान की आज्ञा मानना, धीरे धीरे करके व्यक्ति फिर आगे प्रगति करता है। ये यही समझ में आना चाहिए। हम लोग डायरेक्टली भगवान के बारे में समझते हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमसे कहा जाए कि वेद कहाँ पढ़े हैं, तो वेद तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वेद को बोलने वाले भगवान कृष्ण की डायरेक्ट आज्ञा मान रहे हैं। अब ये लोग भी धीरे धीरे प्रगति करते हैं। देखिए वह भगवान विष्णु को स्वीकार डायरेक्टली करने के योग्य नहीं है, इसीलिए उस समय उसकी चेतना, इसी कारण से ज्ञान उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा।
मगर जैसे कर्मकांड में,
पहले मैं रिपीट करना चाहता हूँ इस बात को, नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ कृष्णा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ कृष्णा, भगवान के नियंत्रण के बाहर कुछ नहीं है। आप भगवान कृष्ण को स्वीकार करने के योग्य थे, इस कारण से आपके सामने कृष्ण का ज्ञान आया है। ये बात समझ में आती है? जितने भी भक्त यहाँ पे हैं उनके संग वालों ने भी शायद सुना होगा, कुछ लोगों के हाथ में गीता आई भी होगी, उन्होंने नहीं पढ़ी, जीवन भर पूरा जीवन बीत जाए, अगले जन्म में लेंगे ऐसे। क्योंकि हम भगवान को स्वीकार करने के योग्य थे, अपूर्व स्वीकृति कहिए कुछ भी कह लीजिए, इसलिए वो ज्ञान हमारे सामने आया। तो इस जगत में जिस जो व्यक्ति जिस ज्ञान को धारण करने के योग्य होता है, भगवान की व्यवस्था से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब ये प्राणायाम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अब भगवान की कृपा से आगे भक्तों का संग प्राप्त होगा तो समझ जाएंगे। आप जानते ही हैं कि अष्टांग योगी के द्वारा जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति परमात्मा का अनुभव कर पाता है। अब ये सब बातें आजकल के जमाने में आप देखेंगे तो ये थ्योरी हो जाता है, क्योंकि कोई करता नहीं इस प्रकार से प्राणायाम भगवान को प्राप्त करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। तो ये सब भगवान बातें बोल रहे थे कब, 5-4 साल पहले। अभी तो कहां कोई थोड़ा बहुत द्रव्य के कर सकता है, बस उसमें भी वो चीनी अधिक और शरबत कम वाला शरबत बांटते है कि नहीं, होता है ना, क्या कौन सा वाला शरबत होता है, रूअब्जा, कलर रहता है उसमें, रूअब्जा नहीं रहता, तो क्या द्रव्य यज्ञ करेंगे, कुछ भी ठीक से नहीं हो सकता।
आज के डेट में कहा जाता है कि जैसे आपने कहा कि सेना में जो मरता है युद्ध के दौरान, तो आज के डेट में ये प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकता कि आज के डेट में जो जिस तरह से सेना युद्ध कर रही है चीटिंग के साथ और बम गिरा रही है, तो वो तो युद्ध में मरेंगे तो भी वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक में ही जाएंगे, है कि नहीं।
चलिए छोड़िए इस बात को, बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रसन्नता के लिए यज्ञ के अनुसार नहीं करता है कार्य, तो फिर उसको आगे लाभ प्राप्त नहीं होगा।
यस प्रभु जी, जैसे अभी जैसे यज्ञ की बात हो रही है, तो एक क्वेश्चन मेरे को डाउट है कि जैसे हम लोग को जो बॉडी मतलब शरीर मिला है, ये बेसिकली मतलब कि बुद्धि मन और इंद्रियों से रिलेटेड होता है, तो जो भी कर्म हम करते हैं इंद्रिय विषयों के थ्रू होता है और मन में स्टोर होता है और बुद्धि उसकी डिसीजन मेकिंग करती है, और इसी कारण हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। अब जब हम यज्ञ करते हैं, हरिनाम मतलब करते हैं, हरिनाम का यज्ञ करते हैं, तो ये जितने सारे जो कर्मा जो है जो मन मन में स्टोर्ड है, तो जो हम लोग हरिनाम करेंगे वो सोल के लेवल पे है, तो फिर तो ऑटोमेटिक्स में जो शब्द आता है कि जब हम हरिनाम करते तो हमें 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 जो जो खुशी है या जो हमें द्रव्य है वो ऑटोमेटिक मिलता है। तो द्रव्य मिलना या खुशी मिलना ये तो मन की मतलब कि मन के
पार्ट, देखिए ये भगवान का सिस्टम ही है। आपने पढ़ा था ना अभी पिछले वाले श्लोक में, मैंने लास्ट पे क्या पढ़ा था, यज्ञ विदो यज्ञ शपित कल्मषः यज्ञ शष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। यानी कि जो यज्ञविद है, जो यज्ञ के उद्देश्य को जानता है, हाँ अब इससे आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, ये सारे लोग यज्ञ के उद्देश्य को जानते हैं। जो प्राणायाम भी कर रहा है वो भी यज्ञविद है, वो जानता है यज्ञ का उद्देश्य क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो ये सब उसने खूब सुन करके प्राणायाम किया, ऐसा नहीं खाली उसने सीख लिया कि ऐसे कैसे करना, उसने ये भी सीख लिया कि क्यों करना है, कि यज्ञविद ध्यान रखना चाहिए। अभी आगे पढ़ लेंगे, आप द्रव्य के यज्ञ कर रहा हो, चाहे ज्ञान यज्ञ कर रहा है, चाहे वह प्राणायाम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वह यज्ञविद है, वह जानता है यज्ञ क्यों करना चाहिए, एक बात जरूर क्लियर होनी चाहिए आत्मज्ञान के लिए। और उसमें लिखा है यज्ञ शपित कल्मषः, पापों से मुक्त होगा, ये स्वाभाविक है। और एक इसे कहते हैं अनुसंगिक फल, मुख्य फल है यान्ति ब्रह्म सनातन, ब्रह्म की प्राप्ति करे, भगवान की प्राप्ति करे, लेकिन अनुसंगिक फल है भोग ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त करना। तो जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, हरिनाम आत्मा के लाभ के लिए है, लेकिन हरिनाम करते हैं यज्ञ करते हैं तो ये आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक फल मतलब गौण फल, जैसे दूध लेते हैं 1 लीटर तो उसके ऊपर वो दूधिया जो है 100 ग्राम दूध ऊपर से दे देता है, तो 100 ग्राम दूध लेने के लिए नहीं पैसा कर रहे हैं, प्राप्त दे रहे हैं 1 लीटर के लिए प्राप्त कर रहे हैं, वो 200 ग्राम 100 ग्राम ऊपर एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो आप उसको काट नहीं सकते, वो आनुषंगिक फल होता है। जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम होता है और यहाँ पे एसी लगा है, एसी चल रहा है, तो अब कोई व्यक्ति क्लास आया है तो एसी सुन एसी की हवा खाने नहीं आया है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि वो क्लास सुनने आया, लेकिन एसी की हवा अपने आप लगती है, ये बात है। अब ये नहीं कह सकते कि मैं क्लास सुनने आया तो एसी की हवा नहीं लगेगी, लगेगी, वो होता ही है। तो जो भक्ति करता है तो ये सब अनुसंगिक फल अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं, कोई भी यज्ञ करता है तो ये भौतिक लाभ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यज्ञविद जो व्यक्ति है वह उसको लक्षित करके यज्ञ नहीं कर रहा, उसका लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति, या भगवान के भक्तों के केस में भगवान की भक्ति की प्राप्ति। क्या है वो श्लोक बल्लभ मंगल ठाकुर का, कि जो व्यक्ति के हृदय में भक्ति है उसको मुक्ति और भुक्ति ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी रहती, मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, साथ में असिस्टेंट है उसकी भुक्ति, तो भोग और ये मुक्ति इत्यादि उसकी एकदम सेवा करने के लिए, सेवते आसमान, वो सेवा करने के लिए तत्पर रहती है, कोई सेवा स्वीकार कर लेता, ये अनुसंगिक फल है। अनुसंगिक फल समझ गए,
अंगिक जो फल हुआ ये मतलब कि बुद्धि से ऊपर हुआ ना,
बुद्धि से ऊपर ऊपर नहीं हुआ, केवल ये शरीर के लिए, अनुसंगिक फल शरीर के लिए मिल रहा है यहाँ पे,
ये जो फल है मतलब कि माइंड में ही चल रहा है,
माइंड में नहीं कह दीजिए, बस हमारे शरीर के लिए मिल रहा है। जैसे अभी हम लोग आराम से रह रहे हैं, टोपी है, कपड़ा है, बढ़िया प्रसाद है, सब कुछ अनुसंगिक फल। जैसे मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, अब क्लास दे रहा हूँ भगवत गीता डिस्कशन करने के लिए, प्रभु जी से बादाम लेने के लिए तो नहीं ना। अब प्रभु जी प्रसन्न हो गए बादाम दे रहे हैं, एक अनुसंगिक फल है, लेकिन उसको हम जो है मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा बादाम मिलेगा, आज बादाम दिया कल काजू भी देगा इसको लेके गीता क्लास थोड़ा कर रहे हैं। गीता क्लास करने का उद्देश्य भगवान प्रसन्न हो जाए, हम लोग भगवान के कुछ बारे में समझें। अब कोई बहुत भक्त प्रसन्न होकर कुछ दे देता है वो अलग बात है, ठीक है, उसको भी स्वीकार कर लेते हैं लेकिन अगर भक्ति के विरोधी नहीं है तो ठीक है। माइक में कुछ कह रहे हैं, माइक दीजिए।
चार स्टेशन आ ही गए ही, चार स्टेशन आएंगे ही आएंगे, आपको इनकार करना है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी ना कविता, तो ये चार स्टेशन तो आपको आने ही है, आपको इनकार करना है कि हम स्टेशन पे नहीं उतरेंगे।
अनुसंगिक फल होता है, और देखिए इसकी भी आवश्यकता है, ऐसा तो नहीं कि आपको जैकेट की आवश्यकता नहीं है भक्ति करने के लिए, ठंड तो लगेगी ना, फिर कठिनाई होगी ना, इतनी अब इतनी अहेतुकी इतने अप्रतिहत तो हम लोग नहीं है, तो कुछ बड़ी प्रैक्टिकल सी बात भगवान बोल रहे हैं कि आपको जो भौतिक आवश्यकता है वह भी इसके मतलब पूर्ण हो जाएंगी अपने आप यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने के द्वारा। लेकिन जैकेट के लिए हरिनाम नहीं कर रहे, बादाम के लिए हरिनाम नहीं कर रहे, या समझना घी सुबह क्या मिलेगा ब्रेकफास्ट में उसके लिए हरिनाम नहीं कर रहे, ये बात बोली जा रही। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे?
किंतु सर्वश्रेष्ठ सूक्त वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है, अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है।
तो ये सबसे अच्छा तरीका है, कृष्ण भावना भावित जीवन, इसमें यज्ञमय जीवन हो जाता है। आप लोग के पास समय है तो एक श्लोक और देख लेते हैं, नहीं तो फिर देख सकते हैं। अच्छा प्रसाद ना, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ रुकते हैं फिर। श्रीमद भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।